તારીખ 31/7/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 180 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 683
ચંદ્ર છે નામ રથ પત્રાંક 180 પાનું 254 સૌભાગ્યભાઈ ઉપરનું આ 11મો પત્ર છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી સૌભાગ્યભાઈ, ગઈકાલના પત્રમાં સહજ વ્યવહાર ચિંતા જણાવી તો તે માટે સર્વ પ્રકારે નિર્ભય રહેવું. સૌભાગ્યભાઈએ પોતાના આર્થિક પ્રતિકૂળતાની ચિંતા વિશે કાંઈ શહેર લીધું હશે તો ચિંતા તો ભયને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે કે ભવિષ્યમાં શું થશે, શું થશે, શું થશે. એમને એમ કહી દીધું કે તમારે નિર્ભય રહેવો. ત્યારે કોઈ મોટા પુરુષ એમ છે કે તમારે નિર્ભય રહેવું, પછી તો નિર્ભય થઈ જવું જોઈએ ને. એવા ટોનમાં એ વાત છે. રોમ રોમ ભક્તિ તો એ છે કે એવી દશા આવે અધિક પ્રસન્ન રહેવું. જો આ યથાર્થ ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ એનું સ્વરૂપ છે. આ શું કે પ્રતિકૂળતા આવે તો પ્રસન્ન રહેવું. અન્ય મતમાં તો નરસિંહ મહેતાનો બહુ સારો દાખલો છે. એ બહુ નિર્ધન હતા. નિર્ધન એટલે હા, કે ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય તો શાક વઘારવા માટે તેલ ન હોય, કે પૂરી તળવા માટે અડધો શેર તેલ ન હોય. એક નરસિંહ મહેતા હો ગઈ અમારે અહીંયા ગિરનારજી હે ને, ગિરનારજી ગયે કે નહીં ગયે? નરસિંહ મહેતાનો ચોરો છે તે. નરસિંહ મહેતા હો ગયે, પણ અભી અભી હો ગયે, લંબા કોઈ ટાઈમ નહીં. સો સાલ કે કરીબ હોગા. કૃષ્ણ ભક્ત થે, ભક્તિ બહુ બહુ બઢિયા ભક્તિ થી, નિષ્કામ ભક્તિ. એટલે કૃપાળુ દેવને ઉસકો માર્ગાનુસારી બોલા હૈ. હું કરું હું કરું એ જ જ્ઞાનતા, સકટનો ભાર જેમ સ્વાનતાણે. એ બધા એમના પદ છે, કરતા બુદ્ધિના નિષેધના. જૈન શાસ્ત્રો વાંચ્યા નથી? કરતા બુદ્ધિનો નિષેધ ક્યાંથી કરે છે? નિર્મળતા આવે છે. એમ ઉસકી નિર્ધનતા એસી થી કે ઘર મેં કોઈ મહેમાન આયે તો સબ્જી કો બઘાર કરને કે લિયે, છોંકને કે લિયે તેલ નહીં હોય ઘર મેં. ઓર ઉસકા વિવાહ હૈ તો ઉસકો બોલા કે મહેતાજી, તો પહેલે તો નામ નહીં દેતે થે, લેડીઝ લોગ અભી નામ બોલતી હૈ, હસબન્ડ કા નામ નહીં બોલે ઉન જમાને મેં. મહેતાજી તેલ તો લે આવો, વિવાહ આયે હૈ, લડકી કા સસુર કોણ આયે થે? લડકી કા સસુર આયે થે વિવાહ. પૂરી પૂરી ખિલાની હોગી, પૂરી પૂરી કે લિયે થે તો એકાદ દ્રતલ, કિલો નહીં થા, શેર બોલતે થે, શેર મને પાઉન્ડ તેલ લે આના, હું તો પેલી દે દિયા. છોટી સી જો ટોપિયા હોતા હૈ ને છોટા, ઉસકો બોલતે તપેલી, તો દે દિયા કે આપ બજાર મેં જા કરકે તેલ લેકે આ જાના. वो घर से बाहर निकले तो रास्ते में इनके सत्संगी लोग भजन करते थे, भक्ति करते थे, तो अरे 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 मेहता जी आ गए, चलो बहुत मजा आएगी अभी तो, क्योंकि वो बहुत दिल से भक्ति करते थे तो उनकी भक्ति में दूसरों को भी रस आता था। जो भाव से भक्ति करते हैं ना तो दूसरे को आविर्भाव होता है भाव का, क्योंकि बैठो बैठो बैठो, वो भूल गया कि मैं तेल लेने को निकला हूँ और घर में क्या होगा, खाने का टाइम हो गया है कि नहीं हो गया है, वो लग गए भजन में। उनको निर्धनता का बिल्कुल लक्ष्य नहीं जाता था और कोई दुख भी नहीं था, वो भक्ति के आड़ में सब भूल जाते थे, सब बात भूल जाते थे। उसका वाइफ मर गई, तो क्या बोले, भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजसू श्री गोपाल। श्री गोपाल माने श्री कृष्ण, उसको गोपाल भी बोलते हैं, बहुत नाम है कृष्ण के। तो क्यों जंजाल छूट गई, चलो क्यों, वो तो सबको मालूम है कि स्त्री कितनी झंझट करती है घर में, कितना बंधन करती है, वो तो सबको मालूम है।
ऐसा ये नहीं करने लगते
हैं,
ऐसा ये नहीं करने लगते
तो चलो अभी झंझट छूट गई, अभी तो रोक टोक नहीं होगी, आप क्यों इतना भजन करती हो, क्यों क्यों कमाते नहीं, क्यों पैसा लाते नहीं, हम लोगों को फटे फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो फटे टूटे कपड़े पहनते हैं। नहीं, जिसको मोह नहीं है उसको रोक टोक तो होती है, जिसको मोह है वो तो सामने से करेगा कि तुमको क्या चाहिए, वो तो ऐसा करेगा। और जिसको मोह नहीं है वो लाने को बोलेगा तो उसको जंजाल लगेगी, ये बोझा क्यों मेरे को, और वो तो बोलेगी कि फिर शादी किया क्यों किया, शादी नहीं करनी थी, आए थे बड़ी बारात लेके, ऐसा ही कहेंगे, क्यों आए थे, बात तो सब सुनाएगी। लेकिन नरसिंह मेहता की स्त्री ऐसी नहीं थी, उनकी स्त्री ऐसी नहीं थी, उन्होंने पिक्चर देखा है इसलिए, वो सब सहन कर लेते थे कि भगवान का भक्त है, मैं इतनी भक्ति भगवान की नहीं कर सकती, चलो वो तो करता है, कोई पैसा नहीं लाता है तो चलो अपन जैसा जैसे भी जैसा प्रारब्ध है वैसा गुजारा कर लो। तो इसके जीवन में चमत्कार की घटनाएं बहुत आती है, लोग तो वो चमत्कार की मुख्यता से इसका जीवन चरित्र देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसके जीवन में जो भक्ति की भक्ति भाव की मुख्यता थी और इसके कारण उसको मोह नहीं था और निर्मलता थी, बहुत अच्छे अच्छे तात्विक पद बनाए हैं, बहुत अच्छे तात्विक पद बनाए उन्होंने। मैं जहाँ लगी आत्मा तत्व चीनो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी, आत्मा की बात वो किया है, भले कृष्ण के भक्त थे लेकिन आत्मा की बात भी किया है उन्होंने। तो यहाँ कहते हैं कि रोम रोम भक्ति तो यही है कि ऐसी निर्धनता की परिस्थिति आने पर अधिक प्रसन्नता रहे। क्या संसार से उल्टी बात है, लोग निर्धनता में परेशान हो जाते हैं, दुखी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत पड़ी है और कोई अपेक्षा फुलफिल होती नहीं तो आकुलता बढ़ जाती है। हाँ, लोग तो अधिक प्रसन्न होने की बात है कि चलो हमारे परिणाम, हमारी योग्यता का ये इम्तिहान परीक्षा का काल है, देखते हैं हम कैसा होता है। तो भगवान की भक्ति चुकते नहीं थे, परिणाम बिगड़ जाते तो भक्ति नहीं होती और भक्ति होती तो परिणाम बिगड़ते नहीं, ऐसी भक्ति थी। अन्य मति में ऐसा होता है, अपन तो जैन मति है। देखो वो तो ईश्वर कर्तृत्व में पड़े थे, फिर भी कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। उन लोगों की श्रद्धा में ईश्वर कर्तृत्व है कि ईश्वर मदद करता है, ईश्वर भक्तों को भला कर भलाई करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगा, मैंने हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपके दर्शन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, आपके दर्शन में हमारी पूरी दुनिया आ गई, ये इनकी भक्ति थी। हैं निरंजन स्थित राखे से यानी अकल लीला लीला जो इन्हें हंसू आवे से गंभीर हास्य आवे से अर्थ कर सो बोलो। शू कैसे मात्र दूसरे जीवों को कचवाया मैंने, अंतर में उसको दुख पहुंचता है, इसका कारण हमारी आत्मा होती है, वहां सहज चिंता करनी, उसका दो अर्थ होता है, इसको दुख होता है इसकी चिंता नहीं करना, वो कैसे सन्मार्ग में आए उसकी चिंता करना है। कि अरे ना समझे इसलिए उनको दुख होता है, अगर सही समझ होवे तो दुख नहीं होगा, तो उसकी जो समझ नहीं है उसकी चिंता करने की बात है, वरना तो सभी मोही कुछ दुख होता ही है, जिसके ऊपर मोह होता है उसको दुख होता है तो अपने को दुख होता ही है, वो बात नहीं है इधर। दृढ़ ज्ञानी प्राप्ति नो ये ज लक्षण छे, ये दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति दृढ़ जिसको हुई है उनका वही लक्षण है, कि जिसको दूसरे जीव को दुख पहुंचता है तो सही रास्ते पे उसका दुख कैसे मिट जाए, ऐसी चिंता उसको होती है, अरे समझ नहीं है इसलिए दुखी है, अगर सही बात समझते तो उनको भी दुख नहीं होता, ऐसा। मुनि ने समझा मानी माथा कूट में आप न पड़ो तो सारो, दीपचंद जी मुनि नो पत्र आयो ने, योग्यतावान नहीं तो हमने जरा विकल्प आवतो हशे, कहा समझे तो हारो समझे तो सारो, ए चर्चा नो प्रसंग हशे बे वच्चे, तो भगवान ने दीपचंद जी ने चर्चा नो प्रसंग हशे। जेने परमेश्वर भटकवा देवा इच्छे छे तेने निष्कारण भटकता अटकाववा, ए ईश्वरी नियमन नो भंग कर्यो नहीं गणाय, शा माटे? गुड बात है कि इसकी योग्यता ही ऐसी है कि उसका परिभ्रमण बहुत लंबा है, आप उसको परिभ्रमण से बचाना चाहते हो तो ये बात कैसे बनने वाली है, ये तो कुदरत की व्यवस्था से विरुद्ध है। जब कोई अयोग्य जीव होता है इसके परिणाम ही उल्टे चलते हैं, और आप उसको बचाना चाहते हो तो इसकी अयोग्यता तो मिटेगी नहीं, मिटने वाली है ही नहीं, तो नियम तो खुद ईश्वरी, मैंने कुदरत का नियम तो ऐसा है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो करता है उल्टा करता है, फिर भी इसको आप उसको बचाना चाहते हो तो आप जो परिणाम उसने किया इसका फल उसको नहीं मिले, ये नियम विरुद्ध की बात है, क्यों ऐसा क्यों करते हो? ऐसा तो नहीं नहीं होना चाहिए। मतलब वो है कि अगर किसी को समझाना है तो भी योग्यता देख करके सोच समझ के समझाना, यानी जिसी को समझने की भावना हो, जिज्ञासा हो, उसको समझाना। लेकिन आप समझाते हो वो विरुद्ध चलता है, क्या फायदा? आपका भी परिश्रम फालतू का जाएगा, फोकट जाएगा, और उसका तो भाव और खराब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे अयोग्यतावान जीव भी संसार में होते हैं कि उसको सही बात समझाओ तो और उल्टी पड़े, सही समझाओ तो और उल्टी पड़े। तो ज्ञानी कहते हैं कि ईश्वर उसको भटकाना चाहता है, हाँ, उसको तुम फालतू निष्कारण मैंने फालतू वो नहीं भटके, उसके भटकन अटकाने का प्रयत्न करते हो, तो ईश्वरीय नियमन के विरुद्ध बात नहीं गिनी जाएगी क्या? तो वो तो ऐसे होने वाली है, वो तो उसको तो और नुकसान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हाँ, वो तो धर्मदासी की बात है कि मैं फूटा घड़ा में पानी नहीं भरता, फूटा हुआ घड़ा में मैं पानी नहीं भरता, और मैं ऊंधा घड़ा में भी पानी नहीं भरता, क्योंकि ऊंधा घड़ा में पानी कहाँ से रहेगा? तो ये ऊंधे जीव है, सूंधे को समझाओ, ऊंधे को क्या समझाते, वो बात है। तो ज्ञानी तो ऐसा नहीं करते, जो ऊंधा है उसको छोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, द्वेष नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं कि चलो इसकी योग्यता नहीं है, जाने दो, इस बात को छोड़ो, अगर फिर भी करोगे तो उल्टी पड़ेगी और उल्टी पड़ेगी, ये बात हो जाएगी। रोम रोम खुमारी चढ़से अमरवरमयज आत्मदृष्टि थी जैसे, एक तुही तुही मनन करवानो पण अवकाश नहीं रहे, त्यारे आपने अमरवरना आनंदनो अनुभव थशे। ऐसे कोई ये शब्द प्रयोग है वेदांत में, विष्णु में ये बात होती है, अपनी भाषा में उनकी भाषा में बात करते हैं। એટલે જ્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે, અથવા નિજ પરમાત્માનો દર્શન થાય છે ત્યારે રોમ રોમ ખુમારી ચડશે, શું કહે છે? રોમ રોમ ખુમારી ચડશે, લોટરી લાગે એવી રીતે, કોઈ જન્મ દરિદ્રી હોય, આજન્મ દરિદ્રી, તો સંપત્તિ બહુ સંપત્તિ મિલ જાય તો ખુમારી ચડ જાય ને, ऐसी बात है। अमर वर मयज आत्मदृष्टि थी जैसे, अमर वर वर एटले धनी, मरे नहीं वो धनी, पोतानो निज परमात्मा शाश्वत, खुद शाश्वत है ना, ते मय दृष्टि थी जैसे, दृष्टि की दृष्टि का नशा की बात है। क्या खुमारी कब चढ़ती है? नशा नशा चढ़ता है ना, तो ये जो दृष्टि है जिसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं, जिसको आत्मदृष्टि बोलते हैं, वो एक ऐसी चीज है कि जिसका नशा चढ़ता है, क्या? जिसका नशा चढ़ जाता है, ये दृष्टि का परिणाम एक ऐसी चीज है। वो समझाने के लिए बात है कि दृष्टि चीज कैसे होती है, इसका परिणमन कैसा होता है, कि इस बार इसका भी एक नशा चढ़ता है, तो उसमें दृष्टि रहती है और उसकी खुमारी रहती है बस। मैं खुद परमात्मा, क्या? मैं खुद परमात्मा, तीन लोक का नाथ मैं हूं, ऐसा नशा चढ़ता है इसका। और एक तुही मनन करने का भी अवकाश नहीं रहेगा, विकल्प तुम तुही जगत में दूसरा कोई है ही नहीं, बस तुही एक ही है, तुम ही मैंने तुम एक ही हो, इतना विकल्प करने का भी अवकाश नहीं रहेगा। निर्विकल्प खुमारी, निर्विकल्प खुमारी, क्योंकि दृष्टि खुद निर्विकल्प होती है, दृष्टि में विकल्प नहीं। આનંદ નો અનુભવ થશે, લીધો છે ને એટલે પોતાને નિજાનંદ નો અનુભવ થશે એમ, અને આપને અમરવરના આનંદ નો અનુભવ થશે એમ। ઓલા તો મળી ગયા હતા એમને, કૃપાળુ દેવ તો મળી ગયા હતા, અને એનો આત્મા ત્યાંથી ખસતો નહોતો, એ દશા તો એની થઈ ગઈ હતી। હવે વાત આત્માનંદની લીધી છે, અમરવર એટલે શાશ્વત એવો આત્મા, મરે નહીં એવો ધણી પોતે અંદરમાં। જો ને અત્રે એ જ દશા છે, જો ને પોતાની વાત લખી શકે ને, એટલે એ વાત નીકળે છે, અત્રે હું અમારી તો હોય દશા હે, હમ તો આત્મા કી મસ્તી મેં, આત્મા કી ખુમારી મેં જીતે હૈ, હમકો કોઈ જગત કી પરવાહ નહીં રહી। એટલે ઘણી વાર લૌકિક રીતે જ્ઞાનીનો વ્યવહાર ખામીવાળો દેખાતો હોય છે, લૌકિક દ્રષ્ટિએ, કે આ લોક વ્યવહારમાં નથી, ન હોય એનું કારણ છે કે એની ખુમારી ને એની મસ્તીમાં જીવતા હોય એટલે એને એ લક્ષ છૂટી જાય છે, સાવધાની નથી રહેતી, અથવા લૌકિક વ્યવહારની કોઈ કિંમત નથી હોતી, એની વેલ્યુ નથી હોતી, એટલે એ વ્યવહાર એટલે એ વ્યવહાર છૂટી જાય છે એનાથી, એવું બને। અત્રે એ જ દશા છે, રામ હૃદયે વસ્યા છે અને અનાદિના ખસ્યા છે, શું આત્મ રામ હૃદયે વસ્યા છે, અંદરમાં પ્રગટ થઈ ગયા છે સાક્ષાત પરમાત્મા, અને અનાદિના કર્મ બધા ખસ્યા છે, વસ્યા ને ખસ્યા, એલિટરેશન ગોઠવું છે, તો આમ થાય કવિ હતા ને પાછા નાનપણથી, રામ હૃદયે વસ્યા છે અને અનાદિના ખસ્યા છે, હમકો આત્મ સાક્ષાત્કાર હો ગયા હૈ ઓર અનાદિ કે કર્મ બંધન સબ ખિસક ગયે હૈ। શ્રુતિ ઇત્યાદિ ઘસ્યા છે, ત્રીજું એલિટરેશન ગોઠવું, શ્રુતિ એટલે એકાગ્રતા, લોકો એમ કહે છે ને જરા એકાગ્રતા કરવી, એકાગ્રતા રાખવી, એ તો હશે છે કે, એટલે એ બધા પરિણામ હશે છે, સ્વરૂપ તો સ્વરૂપ છે, હવે પરિણામની શું એની પાસે વાત કરવી, એકાગ્રતા ને ફલાણું ઢીંકણું ને પર્યાયની હું વાતો કરવી, અમને હસવામાં પ્રસન્નતા હોય છે તે બધા પ્રસન્ન છે, બાકી અમે તો અમારી મસ્તીમાં છીએ। આ પણ એક વાક્યની વેઠ કરી છે, આટલું લખવાનું શું કર્યું, વેઠ કરી છે, આટલું વાક્ય લખવાની વેઠ કરી છે, લખવાથી કઈ અમને મળતું નથી, એ લખવું ફાલતું લાગે છે, જેમ વેઠ ફાલતું છે, વેઠ સમજતે, વેઠ નહીં સમજતે, મુફત મેં કામ કરાના ઉસકા નામ વેઠ, ક્યા થા, અમારે અહીંયા જો જાગીરદાર લોક છે ને, ક્યા કરતે હૈ, તો બહુ ગરીબ લોગ હોતે ને ગાંવ મેં, ઉસકે પર વો હુકમ જમાતે હૈ, રવાબ કરતે હૈ, એ ઘર પે આ જાના, જી સાહેબ આ જાઉંગા, और आता है वो हुक्म साहब, हुक्म हुक्म, चलो ये इतना इतना कूड़ा कचरा फेंक दो बार, ये साफ कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर देता है, ठीक चले जाओ, कुछ देता नहीं, काम करा लें और कुछ देवे नहीं, मुफ्त में काम कराए, तो क्या कराया, वेट कराई, और काम करने वाले को वेठिया बोलते हैं, वेठियो तो ना नहीं भाई, वेट करावी वेठिया पास, वेट करावी। फिर क्या है, कोई वार त्यौहार होता है, कोई दिवाली कोई होली, तो ऐसे लोग आते हैं तो उनको खुद दे देते हैं, लेकिन काम ज़्यादा कराते हैं, थोड़ा बहुत देते कभी, तो उनको तो थोड़ा बहुत भी मिले तो भी उनको लगता है कि चलो इतना तो मिलता है, पुण्यहीन लोग होते हैं तो इतना तो मिलता है ऐसा लगता है उनको, बट काम करा लेते हैं। हाँ ले वेट को बेगार बेगारी कहते हैं, वो बेगार लोगों से मुफ्त में काम कराना है। तो कहते हैं कि हमने इतनी बात लिखी कि राम हृदय में बसे हैं, अनादि के कर्म खसे हैं और परिणाम सब प्रसन्न हंसते हैं, वो भी इतना लिखने का भी एक वेट किया है। वो भी क्या जरूरत थी हमको, हमना तो भागी जवानी वृत्ति छे, मुंबई में बैठा छे ने, व्यापार ना परिणामों नो बोझो सहन करता नथी, सहन करी सकता नथी, नहीं थी भागी जवानु मन थाय छे, एटलू आकुलता ने विकल्प में एटलू दुख लागे छे, हमना तो आ बधु मुकी देवानी वृत्ति थाय छे, बधु मुकी ने क्यांक गुफा में बेसी जाइए, હમણાં તો ભાગી જવાની વૃત્તિ છે, આ શબ્દનો અર્થ જુદો થાય છે, એટલે કોઈ પ્રતિકૂળતાથી ભાગવાની વાત નથી, એમ અર્થ જુદો થાય છે એટલે પ્રતિકૂળતાથી ભાગવાની વાત નથી, આ બધા પરિણામો જે છે સંસાર પ્રત્યેના એને એનાથી મુક્ત થવાની વાત છે, એમ ભાવનાની વાત છે, મુક્ત થવાની ભાવનાની વાત છે। इतना लिख करके फिर नीचे एक वाक्य का सहज स्यादवाद किया है, स्यादवाद मैंने स्याद मैंने अपेक्षित, वाद मैंने कथन, कुछ मर्यादा कुछ अपेक्षा रख करके जो बात होती है उसको स्यादवाद कहते हैं, अपेक्षा नहीं रखे तो वो स्यादवाद नहीं है, सब बात अपेक्षित ही होती है क्योंकि उसका एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है। आ काल में कोई मोक्षे न जाए, एवं एक शास्त्र वचन से आ काल में कोई मोक्षे न जाए, तो एनो अर्थ शू था छे, एनी मर्यादा शू के आ काल में कोई आ क्षेत्र थी मोक्ष न जाए, क्या एनी पण मर्यादा छे કે આ કાળમાં કોઈ આ કાળનો જન્મેલો આ ક્ષેત્રથી મોક્ષે ન જાય, વરના તો ઇસ કાળ મે ઇસ ક્ષેત્ર સે ભી મોક્ષ ગયે હૈ, કોણ ગયે, તીન ગયે, ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મા સ્વામી ઓર જંબુ સ્વામી, તીનો ગયે, ઓર ઇસ કાળ મે ઇસ ક્ષેત્ર સે હી મોક્ષ મે ગયે હૈ, લેકિન ઓર ઇસ કાળ મે પેદા નહીં હુએ થે, જન્મ નહીં હુઆ થા, ચોથા काल में जन्म हुआ था, पंचम काल में मोक्ष में पधारे, तो आ काल में कोई मोक्षे न जाए एम मर्यादा छे कि आ क्षेत्र थी न जाए, तो के एमा मर्यादा छे कि आ काल आ काले जन्म हो तो आ क्षेत्र न जाए, ये पछी मर्यादा छे, एनो अर्थ के आ काल में કોઈ આ કાળનો જન્મેલો સર્વથા ન મુકાય, પણ અંશે મુક્તિ ન થાય એમ નહીં, કે મર્યાદા હે, સર્વથા મુક્ત નહીં હો, લેકિન મુનિપત જો મુક્ત દિશા હે, દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રતિબંધ વિચરવું ઉદયાધિ નિમિત્ત લોભ, વો હો સકતા હે, પર દ્રષ્ટિ અપેક્ષા એ તો મુક્તિ હો ગયા, તો ચોથે ગુણ સ્થાન મેં મુક્ત હો ગયા, सही मुक्त एव समय सार में लिखा कि सही मुक्त एव, तो इसका मतलब ये कि सर्वथा जो मोक्ष है वो उसका मना किया है, लेकिन आंशिक मोक्ष का मना नहीं किया है, वो भी इसकी मर्यादा है। इसका अर्थ इस काल में कोई इस काल में जन्म हुआ उसका सर्व कर्म से सर्वथा मुक्ति नहीं हो सकती, बाकी बहुत से कर्म से मुक्ति हो सकती है। इस काल में जो जन्म हुआ जिसका, उसका सर्व कर्म से सर्व प्रकार से मुक्ति नहीं हो सकती, मतलब कुछ एक कर्म से, बहुभाग कर्म से उसकी मुक्ति हो सकती है, वो उसकी मर्यादा है। ऐसा करके वो चार वचन में उसका स्पष्टीकरण अपेक्षा बताई है, क्या काल में कोई मोक्ष न जाए तो यानी चार अपेक्षाएं हमने लीधी से। त्रीजा में भाव थी ने लीधु, चौथा में द्रव्य थी लीधु, द्रव्य एटले कर्म। એના ઉપર થોડી વિશેષ ચર્ચા પણ પોતે કરી છે, આટલો ખુલાસો કર્યા પછી પણ થોડી ચર્ચા કરી છે, કાલની સમય સુધી રાખીશું।